खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। तुम जो कहो तो महफिल से कह दें, तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दें, पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए।
किसी कॉलेज के भूतपूर्व छात्र एक बार आपस में मिले और उन्होंने सोचा कि जो हमें पढ़ाने वाले प्रोफेसर थे उनके घर जाए, तो वो सारे छात्र जो कि अब बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट ओहदे पर है, कोई ऑफिसर है, कोई कुछ है, तो कोई कुछ है, तो वो सारे मिलकर उस प्रोफेसर से मिलने उनके घर पहुंचते हैं और वहां बैठकर बहुत खुश होते हैं और बहुत बातें चलती है। सभी अपने जीवन के अनुभव सुनाने चालू करते हैं, सभी उन कॉलेज के दिनों को याद करते हैं कि कितने खुशी में थे, कुछ कितने खुशगवार वो दिन थे और क्या क्या जीवन में हुआ। लगभग 20-30 साल के बाद वो सब मिल रहे थे तो खुशी भी बहुत थी एक दूसरे को मिलने की, और सबसे ज्यादा खुशी अपने टीचर को मिलने की। पर जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी, धीरे धीरे वो चर्चा जीवन में आए दुखों की ओर गई, समस्याएं, कठिनाई, परिस्थितियां, और सब अपनी अपनी कंप्लेंट करने चालू हो गए। फिर शुरू हुई थी खुशी से, पर अब जीवन में जो कड़वाहट है, जीवन के जो दुख है, जो समस्याएं हैं, जो पीड़ा है, जो कठोर कठिन दुखदाई अनुभव हुए, उसकी चर्चा से सारी चर्चा शिकायत से भर गई। वो प्रोफेसर उठकर किचन में गए सबके लिए चाय बनाने, चाय बनाई और ट्रे में चाय और ढेर सारे कप अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंगों के, कोई पुराने, कोई नए, कोई महंगे, कोई सस्ते, कोई स्टील के, कोई कांच के, कोई पोर्सिलिन के, कोई ग्लास के, ढेर सारे, बड़ा ट्रे लेकर आए और रख दिया और सबसे कहा कि सर्व योरसेल्फ, खुद से ले लो। तो सभी ने चाय ली और चाय पीने लगे। उस प्रोफेसर ने कहा, देखो एक बात सबने नोटिस की, सबने महंगे वाले कप लिए, अच्छे वाले कप लिए, रंग बिरंगी वाले कप लिए, पर जो सस्ते वाले थे, दिखने में थोड़े बद्दे थे, ठीक नहीं थे, वो किसी ने नहीं लिए। इसका मतलब हर एक व्यक्ति अपने जीवन में द बेस्ट चाहता है, सबसे अच्छा बेहतरीन मुझे मिले, पर एक गलती करता है, जो मुख्य चीज है वो चाय है, वो जीवन है, और जो कप है वो पद, पोजीशन, पैसा, सामग्री, सुख, सुविधा है। और जीवन का आकलन इन सब चीजों से नहीं हो सकता। और जब सारा ध्यान उस कप की ओर रहता है तो चाय खो जाती है। भगवान ने चाय बनाई है, मनुष्य ने कप। तो जो जीवन दुख से भरा है, शायद उसका कारण है जो जीवन का मुख्य लक्ष्य है, जो जीवन स्वयं है, उससे ध्यान हटकर जो दूसरी चीजें हैं, जो बाह्यात चीजें हैं, जो बाहर की चीजें हैं, जो व्यर्थ की चीजें हैं, जो कम महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसके ऊपर ध्यान चला गया है। बुद्धि उसी का सोच रही है, किसका? कप का। बस इसलिए ये चाय छूट गई। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, ये पढ़ाई है, जबरदस्त पढ़ाई है, गुप्त पढ़ाई है। कहां पर भी बैठो, चाहे पट पे या तख्त पर, कहीं पर भी बैठो, पर तुम्हें खुशियों में खगिया मारते रहना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट है कि हम जाकर ये बनने वाले हैं। तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं, यदि तुम एम ऑब्जेक्ट को याद रखो तो ये जो खुशी है ये तुम्हारी चाय है, और वो जो बाकी जो कुछ है, जो कुछ कर रहे वो सब बाहरी चीजें हैं। तो उस पे हमारी खुशी निर्भर नहीं है। किस स्थान पे हम हैं, वहां क्या चीजें हैं, वो हमारे खुशी का आधार नहीं है। किन लोगों के साथ हम हैं, वो लोगों का व्यवहार कैसा है, वो हमारे खुशी का आधार नहीं है। पैसा कितना है, ये हमारी खुशी का आधार नहीं है। सुख सुविधाएं कितनी मिल रही है, ये हमारी खुशी का आधार नहीं है। हमारी खुशी आंतरिक है, हमारी खुशी अंदर अंतस से निकलने वाली है। हमारी खुशी का आधार इंद्रिय नहीं है, हमारी खुशी का आधार विषय सुख नहीं है। हमारी खुशी बहुत निराली है। तो जिसको ऐसी खुशी मिल जाती है, खुशी से क्यों ना वो दीवाना हो जाए। खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, ऐसे मुबारक मौके पे साथी पेश दुआओं का नजराना हो जाए। कोई क्या जाने हमने क्या क्या खेल रचाए तुम्हारे लिए, हम भी कैसे कैसे मंजिल छोड़ के आए तुम्हारे लिए। कलिया ही कलिया महका दे ऐसी कि आबाद दिल का ये वीराना हो जाए। खुशियां ही खुशियां दामन में जिसके, ये जो वीराना है ये क्या हो जाए, आबाद हो जाए। ये जो बिहड़ जमीन है वो फिर से खिल जाए, पुलकित हो जाए, महक जाए। तो ब्राह्मण जीवन में हमें कितनी खुशी होनी चाहिए, बात मत पूछो, कितनी खुशी होनी चाहिए। आज की मुरली में खुशी का पारावार नहीं रहना चाहिए। कितनी खुशी होना चाहिए, अपरम अपार। कितनी खुशी होनी चाहिए, एड़ी से चोटी तक खुशी होनी चाहिए। कितनी चोटी होनी चाहिए, बेहद। कितनी खुशी होनी चाहिए, कापारी खुशी होनी चाहिए, कांपना चाहिए खुशी में। कितनी खुशी होनी चाहिए, अथाह। कितनी खुशी होनी चाहिए, जमीन से आसमान तक। कितनी खुशी होनी चाहिए, परम धाम तक। कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए डेली। कितनी खुशी होनी चाहिए, इतनी खुशी कि तुम्हारे दिमाग की नस फट जाए। कितनी खुशी होनी चाहिए माताजी, और कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको। खुशियों में क्या करो, थग्गिया मारो, जंप विद जॉय, कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको। पीछे से प्रकाश भाई, कितनी खुशी होनी चाहिए? बहुत सारी। कितनी खुशी होनी चाहिए? हाँ, समंदर समान खुशी होनी चाहिए। कितनी खुशी होनी चाहिए? खुशी में आवाज ही ना निकले, ऐसी खुशी होनी चाहिए। कितनी खुशी होनी चाहिए? तुम्हारे रोमांच खड़े होने चाहिए पुलक से। कितनी खुशी होनी चाहिए? 100%। कितनी खुशी? नाच रहे थे। कितनी खुशी होनी चाहिए कि खुशी में तुम डांस करते जाओ? कल परसों की मुरली था ना, डांस करते करते पढ़ते पढ़ते जाकर प्रिंस बन जाओगे। कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको कि कोई आके पूछे क्या मिला और हम उनसे क्या कहे, तुमने हिम्मत कैसे की ये पूछने की? क्या तुमको दिखाई नहीं देता क्या मिला? इतनी तुम्हारी मजाल ये पूछते हो हमसे? वो भी पूछ किससे रहे हो? कितनी खुशी होनी चाहिए कि खुशी के तुम नगाड़े बजाओ? कितनी खुशी होनी चाहिए? ढोल बजाने चाहिए खुशियों के, गले में ढोल बजाकर ढिंडोरा पीटो कि हमसे ज्यादा खुश इस संसार में कोई भी नहीं है। कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको? हाँ, खुशी कितनी होनी चाहिए ये प्रश्न है। डांस करना है, कैसे डांस करना है, कहाँ जाके डांस करना है, कैसी खुशी होनी चाहिए? जैसे किसी पत्नी का पति खो गया और फिर अचानक आ गया तो गलियों से बावरी होके फिरती है, वैसी खुशी तुमको होनी चाहिए। कैसी खुशी होनी चाहिए? क्यों ना खुशी में वो दीवाना हो जाए। दीवाना हो जाना चाहिए खुशी में। क्या ऐसी खुशी हो रही है आज की मुरली में? वरदान है क्या? कल था, कल भी था, आज भी है। बेचैनी का कारण अपवित्रता, दुख का कारण अपवित्रता, उदासी का कारण अपवित्रता, खुशी गुम हो जाने का कारण अपवित्रता। तो खुशी यदि नहीं है तो शायद अपवित्रता है। किसी भी कारण से खुशी गुम हो रही है, मूल कारण गहरे तल में अपवित्रता है। आज बाबा ने प्रश्न पूछा है, बाप बच्चों को कैसे रिफ्रेश करते हैं? उत्तर है, ज्ञान सुना सुना कर और याद से। और जैसे ही तुम बाप की गोद में याद आ जाते हो वैसे ही रिफ्रेश हो जाते हो। भक्ति मार्ग में जो विश्राम है उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं है। पावरफुल स्टेटमेंट बोला है मुरली में, उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं है। भक्ति मार्ग में थक गए हो, भक्ति मार्ग की थकान मिटाने बाप आते हैं। उधर तो बहुत कुछ किया, यहां गए वहां गए पर कुछ नहीं मिला। एक दूसरों के सामने झुके पर अवस्था झड़झड़ी भूत हो गई, मिला कुछ भी नहीं। अब बाप आए हैं तुम्हें रिफ्रेश करने, तुम में फिर से प्राण भरने। तो इस ब्राह्मण जीवन में सदा ही खुशियों में खग्गियां मारी जाए, इसके लिए क्या करें उसकी हम चर्चा करेंगे। सब कर ही रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि इतनी खुशी जो है बयां नहीं की जा सकती। इतनी खुशी अनस्पीकेबल, अकथनीय, अवर्णनीय, अवाक, जिसको कहते हैं जिसका जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, अभाष्य ऐसी खुशी है। किसको बताएं? अमाप, अतुल, अतल, इतनी गहरी ये खुशी है, अनिर्वचनीय ऐसी खुशी है। तो क्या करें इसकी कुछ बातें हम देखेंगे। सबसे पहली बात नहीं? सबसे पहला प्राप्ति, अटेंडमेंट्स, ए फॉर अटेंडमेंट्स। जो जो कुछ मिला है उसका चिंतन ज्यादा करना है। व्यक्ति उसका चिंतन करता है जो मुझे नहीं मिला, वही उसके दुख का कारण है। जो है उसका अगर चिंतन करने लगे तो अमाप खुशी होगी स्वतः। जैसे एक व्यक्ति है जिसके पास छोटा घर है, उसमें एक ही कमरा है, थोड़ा बड़ा, वही किचन है, वही बेडरूम है, वही सब कुछ है, पत्नी है, बच्चे है, पर बहुत दुखी है, घर इतना छोटा है, कम पड़ता है। और उसके पास एक गाय है, दो बकरियां है और बहुत सारी मुर्गियां भी है। दुखी बहुत है पर घर कम पड़ता है, छोटा है। किसी गुरु के पास जाता है, गुरु कहता है ठीक है मैं तुझे दुख से मिटा सकता हूं तेरा ये दुख, एक काम करो वो गाय वो दो बकरियां और मुर्गियां सबको घर के अंदर ले लो। वो कहता है ये क्या कह रहे हो? वो कहता है जैसा मैं कहता हूं बस वैसा करो। वो सब अंदर रह जाते हैं और एक हफ्ता में इतना दुखी हो जाता है, ज्यादा दुखी हो जाता है। गुरु के पास वापस जाता है, गुरु कहता है वो जो गाय है उसको बाहर निकाल दो। तो वो गाय को बाहर निकालता है, परंतु मुर्गियां, परंतु वो बकरियां, पहले तो जगह कम, उसमें दुखी, फिर जाता है एक हफ्ते के बाद, कहता है अब नहीं हो सकता। गुरु कहता है वो दो बकरियों को बाहर निकाल दो। फिर वो मुर्गियां उत्पात मचाती है, क्योंकि मुर्गियां तो है अभी भी, फिर भी गुरु ने कहा इसलिए चुप रहता है। फिर जाता है कहता है अब नहीं होगा। गुरु कहता है दोनों मुर्गियों को भी बाहर निकाल दो। फिर एक हफ्ते बाद फिर जाता है, अब कैसे हो? कहते अभी बहुत खुश हूं, अब कोई समस्या नहीं रही, घर भी बड़ा है, सामान भी रखने को जगह है, हर चीज अच्छी है। क्या हो गया, क्या हो गया? खुशी एक सोच की दूरी पर है, इसको लिख के रखना है। खुशी एक सोच की दूरी पर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ वन थॉट। वो जो विचार है, एक सोच, हम यहां खड़े हैं, खुशी यहां है, ये सोच का फासला है। अगर ये सोच कहीं से मिल जाए, ये नया विचार कहीं से मिल जाए, ये नया उमंग, नई तरंग, ये नई विचारधारा, ये नया दृष्टिकोण कहीं से मिल जाए, तो दुख की इस खाई को हम लांग सकते हैं। व्यक्ति रहेगा वही, सेंटर वही है, व्यक्ति वही है, सीनियर्स जूनियर्स साथी वही है, पर दुख बदल गया, अब दुख नहीं रहा, दुख सुख बन गया है, डिपार्टमेंट वही है, बॉस भी वही है, पर हम नहीं रहे वो, हम कुछ और हो गए। क्यों? क्योंकि यहां पे ये सोचना है कि मुझे मिला क्या क्या है, बजाय इसके कि ये सोचे कि क्या क्या मेरे पास नहीं है, जो है वो बहुत है। सोचो वो परिवार जिसमें घर मालिक आ जाए और कहे कि आज रात में ही घर खाली कर दो, कल मैं यहां, मेरे रिश्तेदार, मेरा बेटा है जो विदेश गया था वो आ रहा है, तो उसके लिए मुझे कमरा चाहिए। उनकी क्या हालत हो जाती है? रातों रात घर खाली करना है, कहां जाएंगे? एक मां, तीन बेटियां, कहां जाएंगे? कोई रिश्तेदार नहीं। हमने कभी इसके बारे में नहीं सोचा कि हमें जो जो मिला है वो कितना ज्यादा है और कितना अच्छा है। जो बीमार लोग हैं उनको जाकर देखो, डायलिसिस चल रहा है, 25 वर्ष की उम्र है। हमने कभी ये कहा भगवान से कि ये शरीर हमको जो मिला है, जो इतना स्वस्थ है, हम चल तो सकते हैं, हम देख तो सकते हैं, सुन तो सकते हैं, सब कार्य तो कर सकते हैं, वो प्राप्ति का भाव ही नहीं है। ये तो चलो स्थूल शरीर की बात, उससे भी ऊपर संसार की आत्माओं को देखो कैसे जीते, सुबह से लेकर रात तक दुखों में जीवन बिताते। कल की मुरली में था उल्टे पुल्टे संकल्प, संकल्प विकल्प में गोते खाते रहते दुनियावी लोग, और तुम्हारे पास चिंतन के लिए इतनी श्रेष्ठ सामग्री है, इतना श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का। तुम्हें तो 24 घंटे निखिलेश भाई खुशियों में गोते खाते रहना है, खग्गियां मारती रहनी है, डोलते रहना चाहिए। भगवान के महावाक्य है, बगुलों के इस सभा में तुम डोलते हुए हंस हो। तुम कौन हो? डोलते हुए हंस। तो क्या करते रहना है? डोलते रहना है। दुनिया की आत्माएं लड़खड़ा रही है, कल के मुरली में था। तो सबसे पहला अटेनमेंट्स, प्राप्तियों को याद करते रहना, एकांत में बैठना, और ये सारे काम एकांत में करने हैं। बैठकर एकांत स्थान पर जाओ, बैठो, बाबा कितनी बार याद करते जैसे वो पादरी हाथ में माला लिए एकांत में घूमते, जैसे वो विद्यार्थी जिसकी अभी पढ़ाई है, एग्जाम है, वो क्या करता है, जाता है गार्डन में बैठ के पढ़ाई करता है, जैसे वो योगी पुरुष तपस्वी एकांत में बैठकर तपस्या करते, सन्नाटा छा जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया था उस संदेश में, जैसे कोई खींच रहा था ऊपर से, जैसे ये आत्मा शरीर को छोड़ रही थी, भाभा का सन्नाटा छा गया था, वैसे भाभा का सन्नाटा छा जाए। ऐसे सन्नाटे में, ऐसे एकांत में, ऐसे मौन में, ऐसे वीराने में, एकांत में बैठकर चिंतन करना है, मैंने क्या क्या पाया। मेरी उम्र के नौजवान या लोग इस समय क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं, कर रही हूं, इसका चिंतन करना है। उनका जीवन किसमें बीत रहा है, मेरा जीवन किसमें बीत रहा है, और कई तो कहां चले गए, कई तो चले गए, हम अभी भी है। प्राप्तिया, दूसरा बाबा का प्यार, बाबा की मदद, बाबा की छत्र छाया, इसका बैठकर चिंतन करना है कि बाबा ने कहां कहां मदद की। एक नजर दौड़ानी है अपने सारे ब्राह्मण जीवन में, पिछले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, वो सारे मोमेंट्स, वो सारे पल, वो सारे क्षण जिसमें मैं अकेला था, कोई भी साथी नहीं था, और भगवान की मदद कैसे गुप्त रूप से आ गई थी, भरते हुए किसी ने न देखा, पर झोली भर जाती है कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमने कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। भगवान के संसार में लोग अकेले चल रहे हैं, मनुष्य साथी ढूंढते हैं, पर मनुष्य साथी कभी भी सुखी नहीं कर पाता, कभी ना कभी धोखा जरूर देते हैं। इस संसार का कोई भी संबंध आइडियल नहीं है, कोई भी जोड़ी, कोई भी पेयर, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी कपल कंपैटिबल नहीं है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज है दोनों में। चप्पल के जोड़ के सिवा कोई भी दो लोग समान नहीं है, ऑपरेटिंग एट सेम फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी एकदम जुड़ गई है, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होते हैं ओपिनियन में, और फिर झगड़ा होता है सूक्ष्म तल पर, बड़े तल पर तो होता ही है, सूक्ष्म तल पर भी होते रहता है। एक बाबा ही ऐसा है इस संसार में जिसके साथ हर बात शेयर की जा सकती है, और वो कभी किसी को वो बताएगा नहीं, जिस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है, बाकी के का कोई भरोसा नहीं है। मैं तो चला। तीसरा, खुशी साइकिल, इस चक्र को याद करते रहना है। ये सृष्टि चक्र कैसा घूमा, क्या हम थे और क्या हम बन गए, कैसे श्रेष्ठ थे और कैसे अब बन गए, वो कौन सा जीवन था, ये कौन सा जीवन था, ये कैसे चक्र लगाया हमने। एकांत में जाना है, किसी एकांत स्थान पर बैठकर याद करना है अपने जीवन चक्र को। जब परमधाम में थे तब क्या था, परसों तीन दिन पहले मुरली में था, वहां जड़ अवस्था है, वहां रहने से क्या फायदा, नीचे आते हो यहां चैतन्य है। वहां मैं था, थी आत्मा, कोई महसूसता नहीं थी, परमात्मा वहां भी साथ था, परमात्मा यहां भी साथ है, पर अंतर क्या है। परमधाम में भी परमात्मा साथ था, संगम युग में भी परमात्मा साथ था, वहां संपर्क था, यहां संबंध है, ये अंतर है। वहां क्या था, संपर्क, और यहां क्या है, संबंध। ये संबंध ऐसा कहीं नहीं जोड़ा जा सकता। वो अपनी यात्रा को याद करना, मैं वहां वहां से कैसे नीचे आई, कैसे दिव्य गुण थे, कैसी पवित्रता थी कशिश करने वाली, कैसी निर्विकार चेतना थी, और कैसे विकारों में गोते लगाए, कैसी भटकी। कल की मुरली में था कि तुम झूठी कमाई की है, अब तुम्हारी सच्ची कमाई है, तुम कंगाल बन गए थे, भिखारी बन गए थे, अब बाप ने माला माल बनाया है, तो संगम युग में मुझे अब कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। एकांत में बैठ के सारे चक्र को याद करना है तो सारी उदासी, सारा गम, सारा दुख, सारी उदासी खो जाएगी। उसके बाद में अगला ड्रामा आज की मुरली में है। ड्रामा के बारे में कौन सुन के आया मुरली, आज की मुरली, हर्षित कौन रह सकता है, जो ड्रामा के रास को जानता है वो हर्षित रह सकता है। कुछ दिन पहले था मुरली में, ये ज्ञान के पेचीले राज है, केवल तुम समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। साक्षी होकर ड्रामा को देखना है कि इस ड्रामा में क्या चल रहा है, मेरे जीवन के ड्रामा में क्या चल रहा है, मेरे ब्राह्मण जीवन के नाटक में क्या चल रहा है। एक है विश्व नाटक जो बड़ा है, एक दूसरा है यज्ञ, भी एक ड्रामा है, इसमें क्या क्या चल रहा है। इससे भी दूसरा एक बड़ा है ब्राह्मण परिवार, इसमें क्या क्या चल रहा है। फिर छोटा है सेंटर, फिर एक है डिपार्टमेंट, और सबसे गहरा जो नाटक और इन सबसे जो बड़ा है वो कौन सा है, अवचेतन मन का नाटक, मेरे मन के गहरे तलों का नाटक, क्या चल रहा है उसमें। इस नाटक में कौन से एक्टर कब आ रहे और कब जा रहे, कौन से विचार आ रहे और कौन से विचार जा रहे, इसका चिंतन करना है, साक्षी होकर देखना है, अपने ही पार्ट को साक्षी होकर देखना है कि कौन सी बातें आई मुझे दुखी की और चली गई। दूर से देखना है, अच्छा ये बात थी, दूर से देखना है, वो व्यक्ति आया उसने ये बोला, मैं तीन दिन तक उदास रहा, और आज देखता हूं तो बात तो इतनी छोटी थी, फिर भी उदास, फिर भी दुखी, क्यों। साक्षी होकर देखने से बातों का प्रभाव कम हो जाता है, नहीं तो व्यक्ति उन्हीं सोच में डूबा रहता है, जो जो उसके जीवन में दिनचर्या में सुबह से लेकर रात तक जो जो छोटी छोटी बातें होती है, छोटी 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 सी छोटी बातें प्रभाव छोड़ती है मन पर, छोटी सी बात। रोज हम एक जगह बैठते हैं, आज गए वहां कोई और बैठा था, यह हमारा स्थान है मुरली का। हमारे जो अटैचमेंट्स है वो इतने सूक्ष्म अटैचमेंट है, हमें भी पता ही नहीं कि ये भी अटैचमेंट है। कोई जीवन से नया व्यक्ति आया वो भी एक अटैचमेंट क्रिएट करता है, जीवन से कोई व्यक्ति चला गया उसका जाना भी एक अटैचमेंट होता है, पकड़ के रखता है उसको मन। कल की मुरली में था, परसों की मुरली में, यहां हंसों का संग है, बाहर जाओगे तो, बाहर जाओगे तो माया की धूल है। परसों था मुरली में, माया की धूल, और धूल तो कुछ भी करो, केवल चलो यहां से वहां तक, धूल लगनी है, विचार धूल है, उड़ती रहती है, लग जाती है। इतने सूक्ष्म संकल्प, इतने सूक्ष्म तलों पर अटैचमेंट डेवलप होती है, मैं, मेरा, ये पकड़ के रखता है। तो ड्रामा के गहरे राज को जानना तो खुशियों में खगिया मारेंगे, उसके बाद में ई एक्सपेरिमेंट करते रहना है प्रयोग, तो खुशियों में खगिया मारते रहेंगे। ये ज्ञान प्रयोग के लिए, ये ज्ञान एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। कल के में वरदान में था शांति का प्रयोग करो, शुभ भावना शुभ कामनाओं का प्रयोग करो, नैनों की भाषा स्नेह की भावना प्रयोग करते रहो। हमारा जीवन एक लेबोरेटरी बन जाए, प्रयोगशाला। हमारा जीवन क्या बन जाए? प्रयोगशाला। और उसमें हम साइंटिस्ट है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन के खड़े रहना है दो टेस्ट ट्यूब के साथ। क्या है ये, इधर से इधर डालना, इधर से इधर डालू, इधर से डालू कि उसमें डालू? वैज्ञानिक प्रयोग करते रहना है। अच्छा ये परिस्थिति आई, मैंने ऐसा किया, परिणाम झगड़ा, अब क्या करना चाहिए नेक्स्ट प्रयोग में? ये था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, उसने मुझे ये कहा, मैंने भी कोई कम थोड़ी हूं, हम कोई कम है क्या? हमने ये कहा, चलो ये स्टिमुलस, ये रिस्पॉन्स, रिजल्ट झगड़ा दुख। ये अभी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, अभी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करना है। उसने कुछ कहा, हमने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा ज्यादा झगड़ा, चलो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करते रहना है रोज सुबह से लेकर शाम तक, और देखना है क्या होता है, लाल पीला नीला हरा। परसों की मुरली में था, अगर चोट खाओ, किसको याद है, फिर से खड़े हो जाओ। अगर गिरे, चोट खाई, तो फिर से खड़े हो जाओ। मुरली में था, कितने गिरते रहते हैं, वो गिरने की बातें चालू थी। कितने आते हैं, गिरते हैं, बाप का हाथ छोड़ते हैं, पवित्रता का प्रण करते हैं, फिर मुंह काला करते हैं। उसी में ये बात थी, लास्ट पैराग्राफ मुरली का, गिरो फिर खड़े हो जाओ। एक्सपेरिमेंट करते रहना है। उसके बाद में खुशियों में खग्गिया मारने के लिए अगला है जी, अर्थात ग्रेटिट्यूड, अर्थात धन्यवाद, अर्थात अहोभाव, अर्थात उपकार तुम्हारा बाबा। किन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने जो पाया है कैसे मैं बतलाऊं। उपकार से भरना है। विदेश में प्रैक्टिस है ग्रेटिट्यूड जर्नल रखते, क्रिश्चियनिटी में रात में थैंक्स ओ लॉर्ड, थैंक्स ओ लॉर्ड, धन्यवाद। एक थैंक्स गिविंग डे भी होता है उधर, थैंक्स गिविंग डे, सबको धन्यवाद करो। किचन में जाओ भाई, धन्यवाद, तुमने ये दिया धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा दिया तो धन्यवाद, जो दे उसका भरा, जो ना दे उसका भी भला, सबका भला, सबके लिए धन्यवाद। धन्यवाद की पुकार अंदर से निकलनी चाहिए सबके लिए, इस सृष्टि के लिए धन्यवाद, इन तत्वों के लिए धन्यवाद, इस शरीर के लिए धन्यवाद। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी था, मरने वक्त भगवान से प्रार्थना करता है और फिर अपने शरीर से बात करता है, मेरे शरीर तुझे भी धन्यवाद, तुझे मैंने बहुत दुख दिया, इतने उपवास रखे। कल की मुरली में था क्लेश काया, कल की साकार मुरली क्लेश काया का वर्णन था। जैन लोग अपने बाल निकालते हैं, उसको कहते हैं क्लेश काया, काया क्लेश, क्लेश काया और काया क्लेश। दो घंटा लगता है, एक व्यक्ति बैठता है, एक होता है मुंडन कर देना, ये इससे वो ऐसा नहीं, नहीं एक एक बाल को निकालने की प्रथा है, एक एक बाल को पकड़ पकड़ के निकालना, कम से कम मिनिमम 2 आवर्स लगते हैं। तभी दूसरा व्यक्ति, दूसरा जैन साधु बैठेगा पीछे, हम ऐसे बैठेंगे और वो एक एक खींच खींच के निकालता है और उसको एकदम तटस्थ बैठना है। रोने की तो बात ही नहीं, खुशी की बात है। शरीर मतलब शूद्र, ये मान्यता है, शरीर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल दवाई नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, बहुत भोग में डुबाया है उसको। ये है जैन साधना। ये कल की मुरली में था ना क्लेश काया। तो धन्यवाद इस शरीर के लिए भी। सेंट फ्रांसिस कहता है बहुत दुख दिया तुझे, सॉरी, जाते समय अपने शरीर को सॉरी बोला, क्योंकि तुझ में बैठकर ही तो मैंने भगवान को पाया, तुझ में बैठकर मैं साधना कर सका। इसके लिए ऐसा कष्ट ऐसा दुख इस शरीर को नहीं देना है, शरीर को प्रशिक्षण देना है, अनुशासित करना है, पीड़ित नहीं करना है, सप्रेशन ना हो। उसके बाद में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, एकांत में जाकर इस संसार के इतिहास के बारे में सोचने अपने आप मन खुशियों में आएगा। कई बार मुरलियों में आता है कि स्वचिंतन करो, पूरा हिस्ट्री, एक है दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी, एक है अपने जीवन की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मैं किस किस स्थान पर गया इस जीवन में, मैं किस किस स्थान पर गया और मेरे जीवन में क्या क्या हुआ, किन व्यक्तियों की एंट्री हुई और किन की एग्जिट हुई, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, कौन आए कौन गए, मेरे जीवन का इतिहास कैसा रहा, दुख भरा है या सुख भरा है, ब्राह्मण जीवन का इतिहास कैसा है, खुशी में हो दुखी में हो, साक्षी होकर एकांत में चिंतन करना है, अपने आप से बातें करनी है, अपने आप से बातें, तो खुशी होगी। उसके बाद में आय, आय अर्थात इनकम, मूल्यों में कई बार आता है, व्यापारी सोता नहीं है, जब रात में पार्टी आ रही हो, अच्छे आसामी है, सोचा नहीं है, यहां पर भी निरंतर इनकम करती रहनी चाहिए। संसार में है झूठी इनकम, तुम्हारी है सच्ची कमाई, कल की साकार मुरली। योग किया मतलब इनकम हुई, याद में भोजन खा लिया इनकम हुई, मौन में भोजन खाया मतलब इनकम हुई, बातें करते करते भोजन खाया मतलब घाटा। ये बाप की आज्ञा है, ईट विथ मी, लिख के रखना है बाप की आज्ञा, ईट विथ मी, मेरे साथ भोजन करो। पवित्रता की का प्रतिज्ञा तो कर ली, अमृत वेले की तो प्रण कर लिया, अमृत वेले की धारणा कर ली, पवित्रता की कर ली, कर्म योग की कर ली, नुमा श्याम की कर ली, ज्ञान चिंतन कर लिया, पर इसका क्या, ये तो नहीं की, फेल। बाबा ने कहा ये बाप की आज्ञा है, आज्ञा होती है ना, अगर आज्ञा का पालन ना करो तो क्या होता है, फतवा जारी होता है, दंड मिलता है। अवस्था का गिर जाना ही दंड है, मुरलियों में था अभी भी 4 दिन पहले, अवस्था गिर जाएगी फिर मत बोलना ऐसे क्यों होता है, बेचैनी क्यों होती है, उदासी क्यों लगती है, कुछ ही खुशी क्यों नहीं होती है। ब्राह्मण जीवन में उदास उदास लगता है, कुछ भी करने की दिल नहीं होती, ना अमृत वेला उठने की इच्छा होती है, ना मुरली पढ़ने की इच्छा होती है, एकदम स्टॉप हो गया है, कुछ उदासी है, उदासी भी नहीं है, बस न्यूट्रल स्टेज है, ऐसे है बस, खाली बस सेवा करना अच्छा लगता है, बस सेवा करो, कोई 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 वो भी अच्छा नहीं लगता, ज्ञान योग वो सब मत बताओ, ज्ञान योग इधर, हम खाली सेवा करेंगे, कोर्स कराना है, भाषण देना है, साफ सफाई करनी है, भोजन बनाना है, सेमिनार करना है, वर्कशॉप करना है, प्रोग्राम करना है, एंकरिंग करना है, बताओ, बाकी वो मत बताओ, योग भी दिमाग भारी होता है। तो कहां थे हम, नहीं नहीं इनकम। उसके बाद में जे अर्थात जर्नी, दो प्रकार की जर्नी है, अगर मूड खराब हो जाए, उदास हो जाए, तो स्थान को कुछ समय के लिए बदलना चाहिए, कहीं घूम के आ जाना चाहिए, बाहर की भी बात कर रहे, एक तो जर्नी है आंतरिक जर्नी अपने ही मन की, और दूसरी एक जर्नी है बाहर की जर्नी, जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे उसकी, आदर्श शिक्षक की, उसमें भी वो जो जागृति फिल्म है 1954 की, वो जो टीचर है वो देखता है बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, इसलिए वो उनसे पूछता है कि तुम्हारा क्यों नहीं पढ़ते, वो कहते मन नहीं लगता है, इसलिए वो उनको घुमाने ले जाता है पूरे भारत की यात्रा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण के चरणों को धोता सागर का सम्राट है, जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यही निराला थाट है, देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वो पूरी यात्रा करा के आता है तो वो जो एक विद्यार्थी है उसमें, वो कहता है मुझे कितनी बातें पता नहीं है, जो हमेशा शरारत करता है। तब उसको याद आता है, तब उसको समझता है कि मुझे भी ये जानना चाहिए, मुझे भी समझना चाहिए, जागृति आती है। तो यात्राएं दो है, एक तो है यात्रा आंतरिक और दूसरी यात्रा है बाहर की। ब्राह्मण कौन सी यात्रा करे? भक्ति मार्ग में हमने तीर्थों की यात्रा की, अभी यात्रा कौन सी करनी है? अभी हमारे बहुत सारे सेवा केंद्र बने, अलग अलग एक एक केंद्र एक एक तीर्थ है। ब्राह्मण अभी भी तीर्थ यात्रा करे, पर कौन सी तीर्थ यात्रा? सेवा केंद्रों की तीर्थ यात्रा। हाँ, बिना बुलाए नहीं। फिर कल चार प्रकार के मेहमान बताए थे ना, वो कल वाली जितनी कितनी सारी बातें बताई निखिलेश भाई ने, मर्यादा है मेहमान की, मर्यादा है वो सारी पालन करते हुए। तो सीखना है, एक यात्रा है मधुबन की यात्रा, रोज मधुबन की मन से यात्रा करनी है, मधुबन से एक बार यात्रा। जो जहां रहता है एक बार मधुबन जरूर आए, शांति स्तंभ से शक्ति ले, हिस्ट्री हॉल से व्यर्थ को हटाए, बाप समान बाप के कमरे में, उदासी हो तो बाप के कमरे में कुटिया में आ जाओ, चारों महावाक्य जो बाबा के उनको एक बार बुद्धि में आना। योग में कुछ बातें रोज होनी चाहिए, इस पर हम एक दूसरी सीरीज लेंगे जिसको कहते हैं बकेट लिस्ट। बकेट लिस्ट अर्थात कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, जैसे अमृत वेला किया, ये पांच चीजें मस्ट होनी चाहिए उसमें। चार धाम की यात्रा की, पांच स्वरूपों का अभ्यास किया, बाप से बातें की, रिलेशनशिप सारे संबंध जोड़े, विश्व को सकाज दी। हाँ, अभी इसके एडिशनल कुछ करना है तो करो, बाकी ये मार्क्स पूरे चाहिए तो ये उत्तर होने चाहिए उसमें, ये पांच बातें होनी चाहिए। ऐसा मुरली में, ऐसा भोजन में, ऐसा कर्मयोग में। तो ये एक दूसरी सीरीज है, इसके हम चार पार्ट्स में लेंगे, 1, 2, 3, 4, ज्ञान योग धारणा सेवा बकेट लिस्ट, स्पिरिचुअल बकेट लिस्ट। चेकलिस्ट कौन कौन सी होनी चाहिए, मस्ट है जो, क्योंकि नहीं तो भूल जाता है। इसलिए तो ट्रैवल, यात्रा करनी है, और जब यात्रा करेंगे तब बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। उसके बाद में कर्म फिलॉसफी, एकांत में जाके कर्म फिलॉसफी का चिंतन करना है कि मेरे साथ ये जो कुछ हुआ है ये कर्मों के आधार से हुआ है, इसमें जरा भी किसी की गलती नहीं है, किसी को मैं किस क्यों दोष दूं, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, ये सब कर्मों का खेल है, खेल चल रहा है यहां पर। हमें पता सब कुछ है, भाषण भी दिया जा सकता है, पर जो भाषण दे रहा है शायद वो भी चिंतन नहीं करता है कर्म फिलॉसफी का। जो दूसरों को कर्म फिलॉसफी सिखाते हैं वो ही चिंतन नहीं करते, क्योंकि बनी बनाई पॉइंट्स है, याद कर लिया, समझा दिया और खुद अभी हो गया लेक्चर पूरा हुआ, आराम करो। हाँ, अगले लेक्चर तक आराम। तो कर्म फिलॉसफी का एकांत में बैठ के चिंतन करना है तो खुशियों में खगिया मारेंगे कि जो कुछ हुआ है अच्छा ही हुआ है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है इसमें। उसके बाद में एल अर्थात लिविंग वैल्यूज या पावर्स, जिसको हम कहते हैं धारणाएं, वैल्यूज और पावर्स का चिंतन करना है। 36 दिव्य गुण वहां लिखे हुए हैं, 8 शक्तियां है, पता सबको है, भाषण सब दे सकते हैं, बता सब सकते हैं, पर चिंतन कहां के लिए किया है हमने? एक एक शक्ति पर कितना चिंतन किया है? सहनशीलता की शक्ति कितना चिंतन किया है? जब जब सहन करने की बारी जीवन में आई तब तो क्रोध आया, तब तो आवेश आया, तब तो एकदम विद्रोह में तलवार लेके खड़े हो गए सीनियर्स के सामने, हमारे साथ अन्याय, झांसी की रानी का रूप महाराणा प्रताप प्रकट हो गए। और फिर सुबह योग में मैं सहनशीलता का अवतार हूं, मैं सहनशीलता का फरिश्ता हूं, और दिन में परिस्थिति आने पर देख लूंगा एक एक को, सामना व्यक्ति का नहीं परिस्थितियों को करना है, सहन व्यक्तियों को करना है, सामना परिस्थितियों को करना है। ये दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। उसके बाद में एम एम अर्थात मधुबन। मधुबन को याद करते रहो तो अपने आप खुशियों में खग्गियां मारते रहेंगे। आहा ओहो चिंतन करना है मधुबन, भगवान की कर्तव्य भूमि, कहां मैं खड़ा हूं, कहां मैं हूं, कहां मैं आया हूं। और मधुबन केवल एक भौगोलिक व्यवस्था नहीं है कि ये मधुबन है। मधुबन तो बहुत विराट है, मधुबन निराकार है। हर स्थान जहां भगवान की याद है वो मधुबन है, हर स्थान जहां भगवान के ज्ञान का चिंतन मनन गुंजन होता है वो मधुबन है, हर स्थान जहां पर संपूर्ण पवित्रता है स्पॉटलेस ब्रह्मचर्य है। जरा भी शरीर का आकर्षण नहीं है, जरा भी दैहिक वृत्ति आकर्षण वृत्ति दृष्टि वृत्ति खराब नहीं है, वो हर स्थान मधुबन है। मधुबन इज नॉट द जियोग्राफिकल डेफिनेशन, हैज नो जियोग्राफिकल डेफिनेशन, भौगोलिक व्यवस्था नहीं है केवल। मधुबन विराट है, बेहद है, निराकार है। मधुबन मीन्स हाउस विथ नो बाउंड्रीज, हाउस विथ नो वॉल्स, जिसकी कोई दीवारें नहीं है। दीवार रहित जो घर है वो मधुबन है। तो निरंतर मधुबन में रहना है, मधुबन को याद करना, ये तो एक परिभाषा हो गई। दूसरी एक परिभाषा ये मधुबन है जो स्थूल है, जिसकी दीवारें हैं, जिसकी भौगोलिक व्यवस्था है, जिसके लिए इतनी महिमा बाबा ने की है, जो ब्रह्मा का कर्म स्थान है, कर्म भूमि है, कर्मातीत भूमि है, तपस्या भूमि है, परिवर्तन भूमि है, मधुर भूमि है, विशाल भवन है जो ओम शांति भवन है, जो जादू की नगरी है, जो शीश महल है, ढेर सारी महिमा, वो भी मधुबन है। उसके बाद में एन एन अर्थात न्यू लाइफ, नए जीवन का चिंतन करना है तो खुशियों में रहेगी। हमारा कितना नया जीवन है, पुराना जीवन बीत गया, पुराना जीवन खलास खत्म, मर चुका है वो व्यक्ति, मैं वो हुई नहीं, तो मी नवेस। कोई पुराना आ जाए दोस्त और कहे अरे तुम, वो कहते माफ करना मैं वो नहीं हूं, जो तुमने सोचा, जो तुमसे मिला था, जिसकी दोस्ती तुमसे थी, सूडो मैन, वो मर चुका है, अभी तो हम नए हैं, नई जिंदगी, नई रवानी, नई उमंग, नई नया उत्साह, ये हमारा नया रूप है, वो मैं हूं ही नहीं। कैंसल, क्रॉस, वो शूद्र था जिसने गलतियां की, वो शूद्र था जो विकारों में जाता था, वो शूद्र था जिसका आकर्षण शरीर था। आज की मुरली में जबरदस्त महावाक्य है, बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, देहभान में जब तुम गए तो क्या हुआ, तुम्हारी ताकत खत्म हो गई, और जब तुम देही अभिमानी हो, जब तुम में ताकत आती है, वो तो ताकत ही खत्म हो गई थी वहां पर, अब ताकत भरी है, नहीं ये हूं। न्यू जीवन, इस नए जीवन का चिंतन करते रहना है। उसके बाद में ओ ऑब्जर्वेंस ऑफ श्रीमत, श्रीमत का चिंतन करते रहना है। क्या है श्रीमत, क्या है श्रीमत, क्या है मर्यादा, इस बात के लिए क्या मर्यादा है, ये मैं जो करने जा रहा हूं ये क्या है, मर्यादा युक्त है। मर्यादा को तोड़ा, संडे की मुरली, सीता कहां पहुंच गई, उधर पुष्पक वाटिका, पुष्पक विमान तो खड़ा ही है बिल्कुल मर्यादा के बाहर, रावण इंतजार में है, आओ सैर कराने के लिए दुनिया की। आज की मुरली में ना वो समझते हैं यही स्वर्ग है, आज है या कल था, आज ही है, वो कहते हैं आओ मैं तुम्हें अपने स्वर्ग की सैर कराता हूं, रावण का स्वर्ग। फिर उसके बाद में पी प्यूरिटी, पवित्रता में जो सुख है इस संसार में कहीं नहीं है, बुद्धि को डुबो देना है उसमें, पवित्र संकल्पों में, पवित्र बोल में, पवित्र संबंध में, पवित्र चलन में, पवित्र स्मृति में, पवित्र कल्पनाओं में, पवित्र यादों में, पवित्र स्वप्न में, पवित्र दृष्टि में, पवित्र वृत्ति में, पवित्र लिखने में, पवित्र खाने में, पवित्र सुनने में, पवित्र बोलने में, पवित्र स्पर्श करने में, पवित्र बुद्धि में, पवित्र संस्कार में, पवित्र धन में, सब कुछ पवित्र, बहुत पावर है उसमें। दो दिन से आज के वरदान में भी पवित्रता के लिए ही है। बेचैन है अर्थात अपवित्र है, अशांत है अर्थात अपवित्र है। टू क्वेश्चंस, उन सारे प्रश्नों को सोचना है जिनके उत्तर हमको मिल गए, जिसके लिए ढूंढ रहे थे, जो पता नहीं थे पहले, एकांत में जाना है। हम हमेशा उन प्रश्नों के बारे में सोचते हैं जिनके उत्तर मिले नहीं है। अब क्या करना है, उन प्रश्नों को सोचना है जिनके उत्तर मिल चुके हैं, और खुशियों में क्या करना है, डांस। ये प्रश्न था, आज उसका उत्तर मिल गया, धन्यवाद। ये प्रश्न था, नहीं समझ नहीं आ रहा था क्या करे, जब अपमान हो जाए तब क्या करे, तब समझ में नहीं था क्योंकि पहली बार अपमान हुआ था। अब समझ में आ गया, अगर अपमान हो जाए तो इस तरह अपनी स्थिति को अचल अडोल रखा जाए, फेल हो जाए तो इस तरह अपनी स्थिति को अचल अडोल। पता चल गया एक बार गिर गए तो क्या क्या हाल होता है, कैसी कैसी चोटें लगती है, फिर उठना कितना मुश्किल होता है, सीखे एक बार, धोखा खाया एक बार, अब सीखो। प्रश्न मिल गया ना, उत्तर था, प्रश्न था कि कैसे करे, अब उत्तर मिला उसका सोचो। उसके बाद में आर, राजयोग। योग ही एकमात्र साधन है वैसा अगर देखा जाए, जो आत्मा को भरपूर कर देता है, बैटरी चार्ज कर देता है, पावर से भर देता है। बस इसको बढ़ाते जाना है डेली। और अभी अव्यक्त मास आ रहा है, पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, लक्ष्य रखना है जैसे योगी हम अब है, उससे कई गुना अधिक पावरफुल शक्तिशाली योगी हम को बनना है। उसके बाद में अगला एस, सेवा। सेवा एक बहुत अच्छा साधन है जिससे बहुत खुशी होती है क्योंकि बहुत दुआएं मिलती है। अपने आप को व्यस्त रखना है सेवाओं में, कहीं पर भी खाली नहीं छोड़ना है। खाली छोड़ा कि गए, व्यर्थ आने लगता है, कहीं ना कहीं से व्यर्थ टपकेगा, आएगा, फिर दुखी हो जाएंगे। उसके बाद में टी, तपस्या। अपने आप को तपस्वी बनाना है, वैसे ही जीना है जैसे, कैसे, जैसे कौन जिया था 14 वर्ष, राम। राम जैसे कैसा रहा, तापसी रहा, तपस्वी रहा, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विदेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जैसे वो वन में रहा, क्या खाता था, कहां सोता था, कैसा तपस्वी जीवन था उसका, क्योंकि उसी तपस्या में सुख है। योग वशिष्ठ किताब है, मुरलियों में आता है कभी कभी, उसमें राम के वैराग्य का वर्णन लिखा हुआ है, तब का, जब राम वन में नहीं गया, जब राजभवन में, तब लिखा है वशिष्ठ ने, वशिष्ठ योग वशिष्ठ में, कि राम जब देखता है ये सुख सुविधाओं की चीजें, उसको अंदर दुख होता है, इतना वैरागी है राम। वो सबके साथ है, वो सब पहन रहे आभूषण, उसको अंदर से उन सब का जरा भी इच्छा नहीं है, अंदर से वो भोग विलास को देखता है तो अंदर से दुख होता है वो देखकर, ऐसा वर्णन है योग वशिष्ठ में। इतना वैराग, जंगल में जाने से पहले जब राजभवन में है, इसलिए तो अगर उसकी जगह हम होते और हमको कल सुबह राजा बनने वाले और रात को पता चलता है राजा नहीं, तुम्हारा भाई बनेगा, तुम जाओ, तलवार लेके खड़े हो गए होते। कोई गए कि ये जगह अब तुम इसके इंचार्ज, ये सेंटर तुम्हारा, और कहे दूसरे दिन नहीं नहीं तुम नहीं, दूसरा। लड़ाई, वो वैरागी है, तिनके की तरह छोड़ दिया, उसे कुछ नहीं है, ऐसा जीवन, तपस्या। उसके बाद में लास्ट पॉइंट 21वां, यू अर्थात यूजिंग ज्ञान इन प्रैक्टिकल लाइफ। ये ज्ञान रखने के लिए नहीं है, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं है, ज्ञान केवल चिंतन करने के लिए नहीं है, ये ज्ञान किसी शोकेस में रखने के लिए नहीं है, ये ज्ञान से दूसरों के सामने अपना सिक्का जमाने के लिए नहीं है, ये ज्ञान प्रयोग करने, प्रयोग अलग बात है, जीवन में उतारने के लिए है। सुबह सुना वो अब उतारो जीवन में, सुबह सुना, जब तक किसी को ज्ञान ना सुना दे रोटी नहीं खाना, ज्ञान है। अब इसको किया क्या हमने, पर नहीं किया तो आज्ञा है बाप की, मेरे साथ खाओ, नहीं खाया तो ये सारी की सारी 21 बातें हैं जो सबके सब हो, तब क्या करेंगे, खुशी में डूलेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, हंसते गाते जाकर क्या बनोगे, प्रिंस प्रिंसेस बन जाओगे। तो आज की मुरली के महावाक्य है, स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसी है कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला, कितनी बड़ी पढ़ाई उतनी ही फैसिलिटीज रहती है, परंतु यहां तुम पट पर बैठ पढ़ते हो। आत्मा को पढ़ना होता है, फिर चाहे पट पर बैठे चाहे तख्त पर, परंतु खुशियों से खग्गियां मारते रहो। तो इस पढ़ाई को पास करने के बाद जाकर हम यह बनेंगे। तो ऐसा हमारी मन की स्थिति हो, ये सारी धारणाएं निरंतर होती रहे। हंस के हमारी हर भूल भुला देना, हम हैं तुम्हारे जब चाहो बुला लेना। अपनों की इस महफिल में अब काम नहीं है बेगानों का, ये दुनिया क्या मोल करेगी इस मुफलिस के अरमानों का। इतनी सी है बस अपनी तमन्ना, तेरी खुशी से दिल परवाना हो जाए। खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, खुशी से वो दीवाना क्यों ना हो जाए। ओम शांति।
कोई क्या जाने हमने क्या क्या खेल रचाए तुम्हारे लिए, दामन में जिसके क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। दामन में जिसके क्यों न खुशी से वो दीवाना हो।